आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
सप्ताह भर के मुख्य समाचारों में मानव अधिकार अधिवक्ताओं ने जताई विवादास्पद नारू निर्वासन योजना पर चिंता। प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप से व्यापार के बारे में की बात और ऑस्ट्रेलियन सर्फर मॉली पिकनप ने जीता अपना पहला विश्व सर्फिंग लीग खिताब। सप्ताह भर के कुछ प्रमुख समाचार विस्तार में और मैं हूं अनीता बरार। मानव अधिकार अधिवक्ताओं ने संसद में नए निर्वासन कानूनों को जल्दबाजी में पारित करने के लिए फेडरल सरकार की आलोचना की है। ये कानून NZYQ समूह की कानूनी दुविधा को हल करने के सरकार के प्रयास का हिस्सा हैं। लगभग 280 गैर नागरिक जिन्हें 2023 में उच्च न्यायालय के एक फैसले के परिणाम स्वरूप लंबी अवधि की इमिग्रेशन डिटेंशन से रिहा किया गया है। पिछले हफ्ते गृह मंत्री टोनी बर्क ने नारू के साथ एक डिपोर्टेशन समझौता किया जिसकी कीमत 30 वर्षों में $2.5 बिलियन तक की है ताकि उनके निर्वासन का सही मार्ग बन सके। जना फेवरू एसाइलम सीकर रिसोर्स सेंटर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उनका कहना है कि लेबर पार्टी का डिपोर्टेशन बिल राजनीति से प्रेरित है।
They may have committed offences, but they've all served their time. Also, people in Australia who are born in Australia have committed offences as well, and they don't face the same deportation. We are talking about people who have Australian citizen family members and children. We're talking about some people who committed maybe an offence over a decade ago. They've been dehumanised and demonised simply for political purposes.
ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ सोशल सर्विसेज का कहना है कि अगर फेडरल सरकार सूचना की स्वतंत्रता के अनुरोधों के लिए शुल्क लगाने की कोशिश करती है तो अगर ये पारित हो जाता है तो रोबोडेट जैसे दुर्व्यवहारों की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ सकती है। सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम डायरेक्टर चार्मेन क्रो का कहना है कि रोबोडेट रॉयल कमीशन ने सरकार को सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के उस हिस्से को निरस्त करने की कोशिश की थी जिसमें कैबिनेट के दस्तावेजों के लिए छूट थी। उनका कहना है कि सरकार आयुक्त की उन सिफारिशों को नजरअंदाज कर रही है जिसमें कहा गया था कि कैबिनेट की जानकारी का खुलासा न करने में जनहित साबित करने की जिम्मेदारी सरकार पर डाली जानी चाहिए।
The Robodebt Royal Commissioner stated in her report that had the strict nature of cabinet documents not been the case in terms of being released under FOI laws as we currently have it, some of what was going on with Robodebt may have been revealed to the public much sooner, including the fact that the initial advice to the minister was that legislation was required and then that was removed when the new policy proposal went to cabinet for decision.
गुरुवार 4 सितंबर को सरकार ने गठबंधन की अवैध रोबोडेट योजना के पीड़ितों को $475 मिलियन का भुगतान करके एक सामूहिक मुकदमे का निपटारा करने पर सहमति व्यक्त की थी। रोबोडेट ने सामाजिक सुरक्षा प्राप्तकर्ताओं से उन ऋणों की आक्रामक वसूली के लिए स्वचालित प्रणालियों का उपयोग किया था जो कई लोगों पर बकाया नहीं थे। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीसी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बात की। दोनों ने व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों और सुरक्षा सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिकन राष्ट्रपति के दोबारा चुने जाने के बाद एल्बनीसी ने अभी तक ट्रंप से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं की है। दोनों के बीच जून में कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मिलने की उम्मीद थी लेकिन ट्रंप के अमेरिका जल्दी लौटने के कारण ये मुलाकात रद्द कर दी गई। उधर उप प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स ने भी पिछले हफ्ते वॉशिंगटन DC में अमेरिकन उपराष्ट्रपति JD वेंस से मुलाकात की थी। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनका प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय से टैरिफ पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध करेगा। कोर्ट ऑफ अपील्स ने पाया है कि अधिकांश टैरिफ अवैध रूप से लगाए गए हैं। अदालत ने पाया कि ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर शुल्क लगाने से पहले कांग्रेस से परामर्श किया जाना चाहिए था। अब यदि ये निर्णय बरकरार रखा जाता है तो टैरिफ केवल अक्टूबर के मध्य तक ही लागू रहेंगे। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से प्रशासन की अपील पर सुनवाई करने और शीघ्र से शीघ्र फैसला सुनाने का अनुरोध किया है।
It's a very important decision, and frankly, if they make the wrong decision, it would be a devastation for our country. We've taken in trillions of dollars, and by the way, all these countries signed agreements. As an example, they signed; they're all happy, everybody's happy, but some whack job put in a lawsuit. It went before a very liberal court.
दक्षिणी पूर्वी अफगानिस्तान में 3 सितंबर को 5.5 तीव्रता वाले एक दूसरे भूकंप से और अधिक क्षति और विनाश की स्थिति पैदा हो गई है। इससे दो दिन पहले यानी रविवार को इसी क्षेत्र में 6 तीव्रता वाला भूकंप आया था, लेकिन ये दूसरा भूकंप अपेक्षाकृत कम गहराई 10 किलोमीटर पर आया। तालिबान प्रशासन का कहना है कि दोनों भूकंपों से 1450 से अधिक लोग मारे गए, 3400 से अधिक लोग घायल हुए और लगभग 7000 घर नष्ट हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बचाव कर्मी और अधिक मानवीय सहायता की तत्काल मांग के बीच मदद पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महबूब खान भूकंप में जीवित बचे लोगों में से एक हैं। उनका जलालाबाद क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।
I was injured. My leg is broken. My 2 children were injured. My other child was slightly injured. By the grace of God, my other son and daughter with my wife escaped unharmed. But we have lost all our livelihood. Everything is gone.
और सप्ताह की शुरुआत में दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देशों के नेता इस बात पर सहमत हुए कि वे प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शहर त्यानजिन में एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान सौहार्दपूर्ण बैठक की। चीन और भारत के बीच संबंध खासकर 2020 से सीमा पर हुई घातक झड़पों के बाद ठंडे रहे हैं, लेकिन शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी ने सीमा संबंधित मतभेदों को सुलझाने और सहयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। शी जिनपिंग ने कहा कि संबंध का मुख्य केंद्र आर्थिक होना चाहिए। भारतीय विदेश मामलों के अधिकारी विक्रम मिस्त्री ने बताया कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि उन्हें पूरे एशियाई क्षेत्र की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
It was also understood that it is critical that India and China grow and cooperate if there is to be an Asian century and a functioning multipolar world order with a multipolar Asia at its heart.
और खेलों में ऑस्ट्रेलियाई सर्फर मॉली पिकलम ने फिजी में अपना पहला विश्व सर्फिंग लीग खिताब जीता। न्यू साउथ वेल्स साउथ कोस्ट की 22 वर्षीय खिलाड़ी ने पूरे सीजन में अपना दबदबा बनाए रखा और 3 में से 2 हीट्स जीतकर कप अपने नाम किया। और इसी के साथ सप्ताह भर के ये समाचार समाप्त हुए। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।